नमस्कार, ब्रह्मा कुमारीज के YouTube, Facebook और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी विशेष प्रस्तुति बी द चेंज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और लगभग पिछले 3 महीने से दोस्तों हम हर दिन आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं। बातचीत की छोटी सी पहल इसलिए की थी कि ये जो बदलाव का समय है, एक चैलेंजिंग टाइम्स में हम जी रहे हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त प्रिपेयर्ड नहीं थे इस समय के लिए। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा समय आया जिसके लिए हम सबको ऑफ गार्ड हमें पकड़ा और हमने थोड़ी बहुत कोशिशें की कि हम संभल जाएं और कुछ चीजों को बदलें। इस बदलाव के समय में जहां पर हम प्रोफेशनल हेल्प नहीं ले सकते या जब मुश्किल की घड़ियों में हम अपने फ्रेंड्स से नहीं मिल सकते या फैमिली से नहीं मिल सकते, ऐसे समय पर हमें सपोर्ट की आवश्यकता पड़ी, वाइज विजडम की आवश्यकता पड़ी, गाइडेंस की आवश्यकता पड़ी और ब्रह्मा कुमारीज ने इस मौके को आपके सामने लाने की कोशिश की कि ऐसे समय पर ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहन मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन बनकर सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम बनकर हमारे साथ जुड़े और हमारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। आइए आज भी इस सफर में हमारे साथ एक नए मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं और उनसे हम बातचीत को आगे रखते हैं। जो दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सवाल पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। सीधे आप टाइपिंग कीजिए फेसबुक या यूट्यूब या जहां पर भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वहां पर आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं और वहां से हम क्वेश्चंस लेंगे। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछना चाहते, इफ यू जस्ट वांट टू शेयर हाउ यू फीलिंग टुडे, अगर आपको लगता है आपको कोई ख्याल है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ लिख सकते हैं और हम स्क्रीन पर उसे दिखाते रहेंगे। यू वांट टू गिव अस अ शाउट आउट, यू कैन ऑलवेज डू दैट, और वो भी हम स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम 99th एपिसोड पे हैं और हमारे साथ आज एक खास मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं। हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जसू जी जुड़ रहे हैं सीधे ब्रह्मा कुमारी यूनाइटेड किंगडम से। जसू बहन ने अपने पिछले अनेकों दशकों के अनुभव में भारत और भारत के बाहर देश विदेशों में अनेकों जगहों पर बहुत सारे कार्यक्रमों में हजारों लोगों को मेडिटेशन के मार्ग से अवगत कराया है। उनके गाइडेंस में हजारों भाई बहने पॉजिटिव चेंज को अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एज ए टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ मेडिटेशन जसू बहन के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आज हम बेनिफिट्स लेंगे। जसू बहन स्वागत है आपका।
नमस्ते, ओम शांति। यहाँ पर आप सबके साथ आकर के शेयर करना हमारा सौभाग्य है। वैसे तो ऐसे डायरेक्ट टीवी पर नहीं सुनाते हैं, लेकिन इट्स नाइस टू कनेक्ट। जो भी यहाँ पर हमारे साथ सुन रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को भी कुछ न कुछ फायदा होगा। जैसे भाई ने बताया, आजकल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऐसी सिचुएशन आएंगे और इसी सिचुएशन में हम चार दीवारों के बीच में ही कुछ लोगों के साथ 24 घंटा कैसे बिताते हैं। इट्स रियली अ न्यू एक्सपीरियंस सभी के लिए।
थैंक यू जस्टी बहन। मैं फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ। हमारे फ्रेंड्स ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। मैं आज थोड़ा प्रोग्राम शुरू करने में डिले हुआ है फ्रेंड्स, इसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। सलोनी जी हमारे साथ हमारे पहले व्यूअर हैं जो यूट्यूब से लाइव देख रहे हैं प्रोग्राम को, और सलोनी पूछती हैं, मुझसे एंगर कंट्रोल नहीं होता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है ज्यादा और फिर एकदम शांत हो जाती हूँ, ऐसा सलोनी कहती हैं, आप उनको प्लीज एडवाइस करें।
सलोनी, आपने प्रश्न जो पूछा है वो एक्चुअली आप अकेले का प्रश्न नहीं है। मैं समझती हूँ आजकल तो जैसे सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड होता है तो सभी को छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, और खास करके हम जबकि ये 2-3 व्यक्तियों के साथ जो भी छोटा सा परिवार है उसके साथ ही सारा टाइम रहते हैं। जैसे पहले ही बताया कि किसी को हम मिल नहीं पाते, कहाँ जा नहीं सकते हैं, तो जायज है कि हमारा गुस्सा जो जिसके साथ हम हैं उसी के ऊपर ही निकलता है। लेकिन साथ साथ आपने ये भी बताया कि आप गुस्सा तो आता है फिर शांत हो जाते हो, तो शांत हो जाते हो ये तो अच्छी बात है, लेकिन शांति भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है हम अंदर साइलेंस में चले जाते हैं, लेकिन वो गुस्से वाली शांति होती है, तो वो हमें अंदर ही अंदर खाता रहता है। लेकिन एक होती है हम सचमुच शांत हो जाते हैं, तो वो होता है हम अपने अंदर बीइंग एट पीस विद द सेल्फ। तो जब हमारा गुस्सा आता है और हम अपने आप बीइंग एट पीस विद द सेल्फ हो जाते हैं, देन दैट्स एक्चुअली अ गुड सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम अंदर शांति में चले जाते हैं और फिर मन में ही वो जैसे गुस्सा चलता रहता है, वो जैसे हमारे लिए ही बहुत नुकसानकारक होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारा टेंशन भी बढ़ता जाता है। गुस्सा आता है उसको बाहर निकाल लेते हैं और फिर शांत हो जाओ, नेचुरली शांत हो जाओ देन दैट्स फाइन, लेकिन उसके बाद तुरंत ही लोगों के साथ भी हम व्यवहार में आते हैं तो वो सिचुएशन जो हुआ है उसको हम भूल जाए. क्या होता है, हम जो भी होता है उसको घड़ी घड़ी दोहराते रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, तो वो गुस्सा हमारे अंदर और ही जैसे ज्यादा बढ़ता जाता है. तो देखने में आता है कि हम जैसे साइलेंस में है लेकिन अंदर गुस्सा और ही बढ़ता जाता है. लेकिन अगर हमने वो रिजॉल्व कर लिया, वो बात ही भूल गई, तो हमारे अंदर उसका जैसे अक्यूमुलेशन नहीं होगा. तो जितना जितना हम ऐसे अपने को शांत रखते हैं तो हमारा गुस्सा भी फिर ठंडा होता जाएगा. आई होप आपको ये एक्चुअली आप प्रैक्टिस करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हमारी शांति भी गुस्से वाली शांति है या हम नेचुरली जैसे आत्मा का स्वभाव है टू बी पीसफुल उस तरह की शांति है.
थैंक यू वेरी मच. मैं समझता हूँ सलोनी जी इस बात से रूबरू होंगे कि आप प्रैक्टिस करके देखेंगे तो ये चीज आप पे असर करेगी सलोनी. और जैसे दीदी ने अभी कहा कि दोनों प्रकार की शांति है, आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए कि ये गुस्से के बाद वाली शांति है कि एक्चुअली आपका रियल नेचर क्या है. और जैसे दीदी ने एडवाइस किया प्लीज ट्राई करके देखें. दीदी कल हमारे साथ एक और दोस्त जुड़े थे, नाम है इनका आकाश डे. और आकाश हमारे साथ कल सवाल पूछ रहे थे जिनका प्रश्न मैं कल नहीं ले पाया था. वो कहते हैं मेरे पापा और मम्मी दोनों को एक साथ कोरोना पॉजिटिव आया है. दीदी वाइब्रेशंस चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए ताकि पैनिक भाग जाए. आकाश इस चीज को डिमांड तो कर रहे हैं बट इस चीज को कैसे मेंटल स्ट्रेंथ को हम कैसे इम्प्रूव करें इसके बारे में एडवाइस करें.
एक तो हम लोग ब्रह्मा कुमारी का जो हमारा प्रैक्टिस होता है ट्रैफिक कंट्रोल का, वो हम घंटे घंटे प्रैक्टिस करते हैं. वैसे देखा जाए तो सारे दिन में हमारी बहुत सारी डिसिप्लिन्स ऐसी हैं जिसमें हम अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं. सुबह सुबह में पहले ही जो हम योग करते हैं जिसको हम अमृत वेले का योग कहते हैं, उसी समय ही हम जैसे कि परमात्मा से वो शक्ति लेकर के उनसे लाइट लेकर के जैसे उसको सकाश कहते हैं, परमात्मा से वो लेकर के अपने अंदर पहले तो जमा करें. ज्यादा क्या होता है, हम दूसरों को देना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास ही नहीं होता है तो हम क्या दे सकेंगे. इसलिए पहले तो हम अपने अंदर जमा करें, जितना जितना हम खुद में वो मेंटल स्टेबिलिटी मेंटल स्ट्रेंथ इकट्ठा करेंगे और फिर उसी के आधार से हम दूसरों को देने के लिए सोचे तो हम कर सकते हैं. लेकिन खुद के अंदर ही स्टेबिलिटी नहीं है, हम सोचते रहते हैं कि मम्मी को ये हो गया, पापा को ये हो गया. तो अगर हम ऐसे नेगेटिव सोचते रहेंगे तो हम खुद भी कमजोर होते जाएंगे, दूसरों को भी मदद नहीं कर सकेंगे. लेकिन जितना हो सके हम पहले तो वो एनर्जी अपने में जमा करें और फिर जैसे ही हम वो एनर्जी से अपने को भरपूर महसूस करते हैं तो फिर हम शांति में बैठकर वो व्यक्ति को जिसको हम देना चाहते हैं, परिवार वाले हो, कोई फ्रेंड्स भी हो, जो भी हो. तो जैसे आकाश भी अपने मम्मी पापा का मेंटल विजन इमेज ला करके उसी को थोड़ा सा वाइब्रेशन देते हैं तो वो वाइब्रेशन से खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को भी थोड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वाइब्रेशंस की एनर्जी बहुत ऊंची होती है, बहुत मदद मिल सकती है. लेकिन वो कैच करने के लिए वो उनको भी थोड़ा सा पीसफुल रहना पड़ेगा. इट्स लाइक अगर कोरोना के बारे में सोचते रहेंगे तो फिर जो मदद मिल सकती है वो भी नहीं ले पाते हैं. जैसे परमात्मा भी सभी को दे रहे हैं लेकिन जिसको लेना है वो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो इट्स गोइंग टू वेस्ट. लुक एट द सन एनर्जी, सूर्य भी होता है, कोई होता है खिड़की बंद कर देते हैं तो फिर वो सूर्य की रोशनी नहीं ले पाते हैं. तो दोनों तरह से इट हैज टू बी एक्सेप्टिंग. तो जितना हो सके हम अपने को भी इतना स्ट्रांग बनाए ताकि हम दे सके. और घंटे घंटे भी ये प्रैक्टिस करते रहेंगे देन यू फाइंड दैट You are helping positively बहुत बहुत जगह से. आकाश
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही, मैं समझता हूँ आकाश इस बात को समझ पा रहे होंगे. और पेरेंट्स से रिलेटेड ही एक बात है तो एक पेरेंट ने सवाल पूछा है, सुषमा नाम है इनका, फेसबुक से लाइव देख रहे हैं. वो कहते हैं कोरोना के चलते बहुत घबराहट होती है और मेरे बेटे की जॉब कब मिलेगी, उसकी शादी कब होगी, ऐसा ये सुषमा जी परेशान है और ये प्रश्न पूछती है.
सुषमा जी, अभी ऐसी हालत में सभी के मन में यही टेंशन है कि जॉब है, किसी का चला भी गया, किसी का है तो मालूम नहीं है कब तक रहेगा, क्योंकि सभी जगह सिचुएशंस ऐसी आती है। लेकिन आई थिंक अगर हम घबराहट में ही रहेंगे तो हमारा मन बिल्कुल ही कंफ्यूजन में बिल्कुल सीधा सोच नहीं पाएगा, तो फिर हमें कहां पर भी कुछ राहत मिलती भी है, कहां से हमें कुछ सोल्यूशन भी मिलता है तो हम उसको कैच नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा माइंड क्लियर है तो कहां से भी हमें कोई मदद मिल सकती है वो हम ले पाते हैं। कंफ्यूजन में हम जैसे कि अंधकार में ही रह जाते हैं। तो जितना हो सके, मालूम है ये सिचुएशन आई है, लेकिन ये भी हमें 100% सर्टेन है कि जो भी सिचुएशन कुछ आता है 100% वो रहने वाला नहीं है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, इट्स अ कॉन्स्टेंट साइकिल। वैसे यहाँ पर भी जो भी कुछ बात आती है कायम नहीं रहने वाली है। तो ऐसे सोचकर भी हम अपने को थोड़ा धीरज देवे तो फिर हम सीधा सोच सकेंगे, मन को शांत रख सकेंगे, तो फिर उसी शांति में हम अपने लिए भी कुछ पॉजिटिव सोच सकेंगे, कुछ कर सकेंगे। नहीं तो ये घबराहट में हम जो भी कुछ करने जाएंगे उसमें भी हमारा जैसे एक्सीडेंट ही होता जाएगा, जैसे हम कुछ भी करने जाएंगे उसमें नेगेटिव ही होता जाएगा। इसलिए जितना हो सके हम अपने मन को शांत रखें, धीरज रखें, क्योंकि मालूम है ये घड़ी आज है, कल चेंज हो जाएंगी। बेटे के बारे में आजकल की दुनिया में आप सोचते हो शादी कैसे होंगी। वैसे तो मैं समझती हूँ जो शादी नहीं किए हुए है वो ज्यादा खुश है, क्योंकि शादी भी करते हैं 2 महीने के बाद, 2 साल के बाद, मालूम नहीं शादी कितनी चलेगी। तो अगर अकेला है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है किसी और की, ऐसे तो ज्यादा खुश रह सकता है। लेकिन जैसे ही परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं, देन इट्स लाइक यू हैव टू थिंक ऑफ डबल द नंबर ऑफ पीपल। तो इसलिए मैं समझता हूँ अगर अकेला है, ज्यादा खुश है, तो उसमें और ही अकेले भी खुश रह सकता है। इससे जरूरी नहीं है कि शादी करे तो ही खुश रहेंगे, ठीक है ना। आजकल सब समझते हैं कि शादी करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम जब न्यूज देखते हैं, सुनते हैं, कई बार ऐसे ही होता है शादी की और एक हफ्ते में ही फिर डिवोर्स हो जाते हैं, एक महीने में ही डिवोर्स हो जाते हैं, घर में झगड़ा शुरू हो जाता है। इससे तो अच्छा है कि हम अकेले ही रहकर अपने को खुश रखें। परिवार में माँ बाप के साथ बेटा है तो वो तीनों मिलकर के ही खुश रह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर बहू होनी चाहिए, राइट।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी। आप कह रहे थे कि सुषमा जी, मैं समझता हूँ दीदी ये बात पॉइंट आउट कर रही हैं कि बहुत ही अनसर्टेनिटी के समय में हम सभी जी रहे हैं, तो ऐसे में बहुत ज्यादा फ्यूचर को लेकर एंशियस होना सही नहीं है कि शादी कब होगी, जॉब कब मिलेगा, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट टाइम्स है और इसमें हमारे पास जो चीजें हैं उस चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो बहुत ही आसानी से हो सकता है। और अगर लड़का आपके घर में है, वो खुश है, वो आपके साथ रहता है, तो अभी उस खुशी को एंजॉय करना चाहिए, ना कि उसके शादी के बारे में सोचना चाहिए। एक और दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, गौरी नाम है इनका, और गौरी यूट्यूब से हमारे साथ लाइव प्रोग्राम देख रही हैं। वो प्रश्न पूछती हैं, आई एम लैकिंग द क्वालिटी ऑफ सेल्फ बिलीफ, प्लीज गिव मी ए प्रैक्टिकल सोल्यूशन, ऐसा पूछती हैं। गौरी कहती हैं कि वो उनको आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है कि आत्मविश्वास की क्वालिटी उनमें नहीं है, तो कुछ प्रैक्टिकली सॉल्यूशन बताएं इस चीज को बिल्ड करने के लिए।
गौरी, आज मैं समझती हूँ सेल्फ बिलीफ, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ दिस, ये सिर्फ आपका ही प्रॉब्लम नहीं है। आजकल सभी जगह हम देखते हैं कि कईयों में बहुत है जो ऐसे लैकिंग फील करते हैं कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है। लेकिन आपने साथ साथ ये भी बताया कि हमें कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दो। मैं समझती हूँ जब तक आप प्रैक्टिकली कुछ करते नहीं है तब तक आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है। जितना जितना आप करते जाएंगे तो प्रैक्टिकली करने से उसमें आपको सफलता जो मिलती है उसके आधार से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाता है। जैसे अगर हम ऐसी एक जगह पर ही बैठे रहे, कुछ करे ही नहीं, और फिर सोचे कि हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? अगर हम कुछ करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी भी करें, कुछ न कुछ प्रोजेक्ट उठा करके हम ले ले, हम देखेंगे कि आजकल घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो सोचते हैं कि अकेले घर बैठे क्या करें, कहीं जा नहीं सकते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कम्युनिटी सिस्टम बन गए हैं और आपस में घर में कोई इतना बाहर नहीं जा सकता है, कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, तो उन्होंने क्या किया, जब भी किसी का बर्थडे आता है तो वो बर्थडे कार्ड बनाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक तरह का जैसे अपने को बिजी रखने का तरीका है, और साथ साथ जैसे वो कुछ करते हैं तो उसमें खुद को भी एक्चुअली वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आती है, और दूसरों को भी जिनको ये कार्ड्स देते हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं, उनको भी रिटर्न में ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स भी देने का लेने का, उसमें भी हमारा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ती जाती है। एक सिस्टर हमारे पास है, वो ओवर 80 इयर्स ओल्ड है, नहीं तो आप सोच सकते हो ऐसी उम्र में कोई क्या करेंगे, लेकिन उसने अभी ऐसे जैसे अपनी स्पेशलिटी बना ली कि हम जिसका भी बर्थडे आएंगे उसके लिए कार्ड बनाएंगे। तो वो कार्ड बनाने बैठ गई तो सभी को जो जिसको भी वो कार्ड मिलते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से हम कुछ न कुछ करते रहे, चाहे किसी को हम किसी को पढ़ना सिखाए, किसी को कुछ करना सिखाए, कोई भी प्रोजेक्ट बना ले, या तो हम खाना बनाना भी शुरू कर ले अगर हम नहीं करते हैं तो जो भी हमारे पास आएंगे जिनके साथ भी हम शेयर करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। उसके रिजल्ट में जो दुआएं हमें मिलती है उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना जितना हम करते जाएंगे आई थिंक प्रैक्टिकली उसमें हमारा एक्चुअली कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और दूसरा, हम ये न सोचे कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। अगर हम सोचे हमारे पास क्या क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी तभी महसूस होती है जब हमारे अंदर हम कुछ देख नहीं पाते हैं, अपने अंदर क्या है वो हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम सचमुच अपने अंदर में देखें तो हमारे पास हर एक के पास कोई ना कोई विशेषता है, कोई ना कोई ऐसे खास गुण है। उस गुण को भी आप देखेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे तो अपनी कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ती जाएंगी, क्योंकि ऐसे कोई नहीं है जिसमें कोई भी गुण ना हो। अगर हम स्पिरिचुअली देखते हैं किसी को तो हर एक के अंदर वो विशेष गुण तो है ही, जैसे पीस है, लव है, हैप्पीनेस है, जॉय है, सबके अंदर है। तो जितना जितना हम इसको रियलाइज करते हैं तो हम महसूस करते हैं कि रियली आई एम नॉट जस्ट अ वैल्यूलेस पर्सन, मेरे अंदर बहुत कुछ है। तो उसके आधार से अपने को ही पहले अप्रिशिएट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि रियली देयर इज नथिंग लैकिंग इन मी। जब हम ये देखते नहीं है, दूसरों को देखते रहते हैं तो फिर लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमी है। अपने को कंपेयर करते हैं तो लगते है कि मेरे में लैकिंग है, लेकिन जब खुद का ही देखते हैं तो मालूम पड़ता है कितना सारा खजाना भरा हुआ है अपने अंदर। तो वो अगर हम इसके डेप्थ में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो अंदर फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी की, बहुत बार हम अपने क्वालिटीज को नहीं देखते कि क्या चीजें मेरे अंदर है वो नहीं देखते। शायद पॉजिटिवली हम अपने अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं उसे देखें गौरी, तो बहुत हेल्प हो सकता है। और दीदी ने जो दूसरी बात कही, जब हम दूसरों को हेल्प करते हैं, दूसरों की ब्लेसिंग्स लेने जैसा कुछ करते हैं तो भी हमारे अंदर अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता जाता है। मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं, और दूसरों को हेल्प करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। अपने अंदर क्या चीज है उसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के अपने ऊपर देखें कि क्या चीजें आपको स्पेशल बनाती हैं। एक और यंग फ्रेंड है हमारे जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, नाम है इनका विग्नेश, और विग्नेश पूछते हैं आई फील वेरी डिप्रेस्ड, व्हाट इज अ क्विक सॉल्यूशन प्लीज। मैं समझता हूँ आजकल जो प्रेशर्स बिल्ड हो रहे हैं, थोड़ा बहुत डिप्रेस्ड फील करते हैं हम लोग डे टू डे वर्क से भी, तो आज कुछ आउटलेट नहीं है, कुछ और क्रिएटिव करने के लिए नहीं मिलता है, तो ऐसा लगता है कि अब क्या करें, तो एक क्विक सॉल्यूशन की मांग करते हैं विग्नेश।
विग्नेश आपने जो पूछा है, इट्स अ सिचुएशन दैट मेनी आर फेसिंग, बट डिप्रेशन तभी आता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, अपने को अकेले महसूस करते हैं। तो घर में अकेले बैठने से बजाय अगर हम नेबर्स में भी जाकर के मदद करते हैं, कुछ जैसे पहले प्रश्नों में भी बताया, क्विक सॉल्यूशन है कि हम अपने को एक्टिव रखें, अपने को बिजी रखें। जब हम आइडल बैठे रहते हैं तो नेचुरली है कि हमारा अंदर सोच चलता रहता है, सोच चलता है, उसमें फिर सोचते हैं क्या होगा, कैसे होगा, अनसर्टेनिटी है, तो उसमें फिर डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन अगर हम कुछ करते रहते हैं तो फिर हमारा मन इतना एक्टिव नहीं रहता है। फिजिकली हम एक्टिव रहते हैं तो मन को जैसे वो सोचने का मार्जिन नहीं है, क्योंकि डिप्रेशन आता है नेगेटिव सोचने से, व्यर्थ सोचने से। तो विग्नेश, अगर आपका सोच के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान देंगे, और हमारा जो सोच है व्यर्थ है या तो नेगेटिव है उसको हम चेंज करें, हम पॉजिटिव थिंकिंग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें, हम थोड़ा प्योर थॉट्स एक्सपेरिमेंट करें। जैसे हम मेडिटेशन के लिए बोलते हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ हमारा सोच के ऊपर ही अटेंशन है। अगर हम सोच ऐसे ही चलने देते हैं तो नेचुरली है डिप्रेशन में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम सोच पर पूरा कंट्रोल करते हैं और उसमें हम पॉजिटिविटी लेते हैं, हम सोचते हैं, अगर अप्रिसिएशन में भी चले जाते हैं कि जो कुछ भी हम देखते हैं उसको अप्रिशिएट करें, तो खुद के अंदर ही वो पॉजिटिव फीलिंग होने के कारण फिर डिप्रेशन से हम जैसे बाहर आ सकते हैं। नहीं तो और कुछ भी नेबर्स है, फ्रेंड्स फैमिली है, उनके लिए भी थोड़ा कुछ करने मदद करते हैं तो उससे भी, जैसे पहले भी बताया, दुआएं मिलती है तो डिप्रेशन से हम बाहर आ सकते हैं। कई बार डिप्रेशन में बैठे रहते हैं तो कुछ करने का जी नहीं चाहता है, लेकिन हम उसको एक बाजू कर दे, अपने आप ही सोचते रहे तो फिर अच्छा लगेगा, कुछ करते रहेंगे अच्छा लगेगा तो फिर डिप्रेशन की बात भी जैसे भूल जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। दिव्यांशी हमारे साथ हैं और वो एक प्रश्न पूछते हैं। वो कहते हैं कि मेरा क्वेश्चन है कि मैं 16 इयर्स की हूँ, क्या मैं राजयोग सीख सकती हूँ और वो भी ऑनलाइन, और मुझे मुरली भी सुनना है, कब स्टार्ट करना चाहिए प्लीज बताइए, ऐसा कहते हैं। दिव्यांशी के प्रश्न के लिए बताएं क्या 16 इयर्स ओल्ड होने पर राजयोग सीखा जा सकता है।
दिव्यांशी अच्छी बात है कि आप में ये इच्छा है, और ऐसे यहाँ कोई भी एज की पाबंदी नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शंस, डजंट मैटर आप 6 साल की हो, 16 साल की हो या फिर 80 साल की हो, कोई भी उम्र में आप ये राजयोग शुरू कर सकते हो। और राजयोग की विशेषता ये है कि परिवार में 3-4 जनरेशन एक साथ ही ये एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, राजयोग एक तरह की पढ़ाई ही है, तो सब मिलकर के एक साथ पढ़ते हैं। और आजकल तो सभी जगह मुरली ऐसे, actually the world has become a very small place because of this situation we're going through. The sab jagah India wale London mein connect karte hai, London wale India se connect karte hai, to bahut si jagah aapko murli sunne ko milengi, online course karne ko milega, to yahan par bhi main samajhti hu program ke ant mein aapko details bataya jayega ki kahan par bhi aap course kar sakte ho. So koi bhi age is नॉट ए रिस्ट्रिक्शन, कभी भी आप करो। अच्छी बात है कि आपको अभी छोटी उम्र में ही ये करने की इच्छा प्रकट हुई है। सो वेलकम टू द ब्रह्मा कुमारीज, एंड आई होप आप जल्दी जल्दी कोर्स करना शुरू करें ताकि आपको जल्दी से उसका बेनिफिट जो होता है वो अपने लाइफ में अनुभव कर सके।
जी बहुत ही अच्छी बात आपने कही। कल एक और दोस्त ने हमसे प्रश्न पूछा था, मैं उसे एक प्रश्न को भी दीदी आपसे ले लेना चाहता हूँ। चेरी नाम था इनका, और चेरी प्रश्न पूछ रहे थे, आई वॉन्ट टू फॉरगेट पास्ट नेगेटिव थिंग्स बट आई कैन नॉट, वाई, ऐसा ही पूछती हैं कि पास्ट की नेगेटिव चीजें वो भूलना चाहती हैं बट उनसे नहीं हो पाता है, क्या करें और क्यों, ऐसा चेरी पूछती हैं।
हमारे पास जीवन में बहुत सारी बातें आती हैं, और चेरी आप पास्ट की बातें भूलना चाहते हो ये तो अच्छी बात है, वो भूल नहीं पाते हो। अभी दादी जानकी हमारे साथ होती थी यहाँ पर, तो वो भी हमको कहती थी पास्ट को भूल जाओ, लेकिन साथ साथ ये भी कहती थी पास्ट की बातें याद करो। तो हम नेगेटिव बातें याद करते हैं तो डेफिनेटली हमको उससे दुख मिलता है, लेकिन पास्ट में ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई होंगी, अगर हम वो अच्छी बातें ही याद करते हैं तो नेचुरली जो नेगेटिव बातें हैं वो भूल जाती है। क्या होता है, हमारे पास जो भी नेगेटिव बातें होती है उसको हम ज्यादा याद करते हैं क्योंकि वो दुख हमने अनुभव किया है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में हम कितनी सारी बातें हैं जिसमें हमने सुख अनुभव किया है। तो अगर हम वो सुख की बातें याद करें तो नेचुरली वो नेगेटिव बातें भूल जाएंगी, लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि हमको नेगेटिव भूलना है, नेगेटिव भूलना है, लेकिन हम उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन इसके बजाय अगर हम अच्छी अच्छी बातें जो हुई है, जिसमें हमें खुशी की महसूसता हुई है, जिसमें हमें सुख प्राप्त हुआ है, वो बातें याद करेंगे तो नेगेटिव बातें नेचुरली भूल जाएंगी। लेकिन हम घड़ी घड़ी जिसमें दुख आया है वही बातें याद करते हैं, सुख की बातें थोड़े समय याद रहती है और भूल जाती है। तो हमें दादी से यही सीखा है कि पास्ट की जो बातें हैं उसमें जो अच्छी बातें हुई है जिसमें हमको कुछ सीखने को मिला है वो याद करें, बाकी सारे जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें आई होंगी जिसमें हमें दुख भी हुआ होगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि दुख के बाद याद न रहे। तो इसलिए जीवन में बहुत सारी बातें सुख भी लाई है, और अभी भी जरूरी नहीं है कि हम पास की बातों का ही सोचते रहे। अगर हम आगे के लिए भी सोचते रहेंगे तो फिर पीछे का नेचुरली भूलता जाएगा, क्योंकि मन दोनों का एक दोनों साइड का एक साथ नहीं विचार कर सकता है। या तो आप पास्ट का विचार करो या तो आप फ्यूचर का विचार करो। तो जितना हो सके आप फ्यूचर में भी देखेंगे हमको क्या करना है, वो अपने अंदर वो एक्सपेक्टेशन लाएंगे, अपने अंदर वो एंथुजियाज्म लाएंगे, तो नेचुरली वो जो पीछे की बातें हैं वो भूल जाएंगे। तो फिर लगेगा कि हमारे पास तो अभी पीछे की बात सोचने का टाइम ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है, बिकॉज यू गॉट सो मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू। या
जी, मैं समझता हूँ पास्ट को याद करना और उसमें क्या चीजें याद करना, ये भी बहुत ही बड़ी चीज है जो आपने अभी हमको ये समझाया कि जो अच्छी चीजें हुई है उसे याद करने की आवश्यकता है, और उसे हम करते रहेंगे तो ये पुरानी जो गलत चीज है, कोई नेगेटिव चीज है, तो वो अपने आप चली जाती है। भारती हमारे साथ जुड़े हैं और भारती यूट्यूब से प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ टू इंक्रीज सेल्फ लव। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते होंगे कि हम अक्सर दूसरों को प्यार बांटना चाहते हैं, दूसरों को खुश रखना चाहते हैं, दूसरों को प्यार देना चाहते हैं, बट अपने आप को प्यार करना, उसे इंक्रीज करना कैसे किया जाए, ऐसा भारती पूछते हैं।
अपने आप को प्यार करना ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, खास करके जबकि हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को कोई और भी बीमारी हो जाती है, तो समझते हैं कि मेरे अंदर तो अपने लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे अभी दो तीन बारी भी बताया, अपने लिए ही पहले सब कुछ करेंगे, अपने अंदर भरेंगे तो फिर दूसरों को दे सकेंगे। तो अपने अंदर भरने का तरीका क्या है, जितना जितना हो सके हम परमात्मा के साथ कनेक्शन रखते हैं, और वो तो है ही प्यार का सागर। भगवान के लिए कहा जाता है कि वो प्यार का सागर है, करुणा का सागर है, दया का सागर है। जितना जितना हम उनके साथ कनेक्शन में रहते हैं तो उनका प्यार का असर हमारे ऊपर आता है, तो हमारा अपने अंदर प्यार बढ़ता है, अपने अंदर विश्वास बढ़ता है। जितना जितना हम ऐसे याद में रहेंगे और अपने अंदर ऐसी एक्टिविटीज में अपने को बिजी रखेंगे जिसमें हमें खुशी मिलती है, हम दूसरों के लिए करने के लिए सोचते हैं लेकिन अपने लिए कभी सोचते नहीं है कि मुझे भी किसी बात में, किस बात में खुशी मिलती है, किस बात में मैं अपने को ऐसे अपलिफ्ट कर सकूं। तो ऐसी तो बहुत सारी किताबें भी हैं आजकल, तो टीवी पर, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे मास्टर्स है जिसके आप सुन सकते हो। लेकिन जितना जितना हम अपने को टाइम देते हैं, थोड़ा सा भी धीरज रख कर के, थोड़ा सा भी शांति में रहकर, तो अपने को धीरज में रखकर ऐसे अप्रिसिएशन करेंगे तो यू नेचुरली फील लव फॉर योरसेल्फ। अदरवाइज क्या होता है कि हम दूसरों को लव देने के लिए तो सोचते हैं लेकिन खुद के अंदर ही ऐसे संकल्प चलते रहते हैं, तो फिर अंदर ही प्यार नहीं है तो दूसरों को क्या दे सकेंगे। अगर हम अपने लिए ही सोचते हैं दैट यस आई डू हैव दैट माइंड ऑफ लव इन माई सेल्फ, मेरे अंदर वो प्यार का खजाना है, तो फिर मैं दे सकती हूँ। वैसे देखा जाए तो किसी को भी कमी नहीं है, हर एक के अंदर वो प्यार है, उसको सिर्फ इमर्ज करने की बात है। तो जितना जितना हम अपने अंदर शांति में बैठ करके वो इमर्ज करते हैं टू एक्सपीरियंस आई एम अ बीइंग ऑफ लव, आई एम अ पीसफुल बीइंग, आई एम अ लवफुल बीइंग, जितना जितना ये सोच चलता है नेचुरली आपका ये लव अपने लिए बढ़ता जाता है। नहीं तो यू डू समथिंग रॉन्ग और अपने लिए जैसे फीलिंग ऑफ क्रिटिसिज्म आ जाती है कि आई रियली डोंट हैव दैट पॉजिटिव फीलिंग फॉर माई सेल्फ। लेकिन अगर हम उसको एक बाजू कर दे, सोचे दैट रियली व्हाट आई एम डूइंग द बेस्ट, और मैं किसी को भला के लिए भी सोचती हूँ, देन यू फील दैट यस यू आर लेटिंग दैट लव इमर्ज फ्रॉम योर सेल्फ। कई बार हम कुछ करते हैं तो बहुत प्यार से करते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो वो प्यार का भी वाइब्रेशन जो होता है वो हर एक को पहुंचता है। इट्स स्टार्टिंग विद द सेल्फ इनसाइड कि मैं किस आधार से, किस कॉन्शियसनेस से करती हूँ। जितना जितना अपने में वो कॉन्शियस रीति से इमर्ज करती हूँ दैट आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड डूइंग एवरीथिंग विद लव, तो नेचुरली वो लव बढ़ता जाएगा। अगर हम सोचते रहते हैं आई एम लैकिंग लव, तो वो लैकिंग लव है वो और ही लैक करता जाएगा, तो जो सामने से मिलता है वो भी हम कैच नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके हम अपने को उसी कॉन्शियसनेस में रखे, उसी अवेयरनेस में रखे कि आई एम अ चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ लव। तो नेचुरली लव तो है अंदर, उसको सिर्फ इमर्ज होने देना है। तो जितना जितना उसके बारे में सोचते रहेंगे वो इमर्ज होता रहेगा। अदरवाइज यू थिंक आई एम लैकिंग इट, तो है ही नहीं, तो फिर अपने में कमी महसूस होती रहेंगी।
जी बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी। बच्चों से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछ रहे हैं, सुनंदा वर्मा नाम है इनका, और सुनंदा जी फेसबुक से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। वो प्रश्न पूछते हैं, अपने बच्चों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस कैसे भेजें, ऐसा ही पूछते हैं।
वाइब्रेशंस तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, हम कुछ भी करते हैं वाइब्रेशंस नेचुरली पहुंचता है। अगर हम लिमिटेड रीति से सोचते हैं कि सिर्फ इनके लिए ही ये वाइब्रेशन है तो वो भी एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। हर एक यही सोचते हैं कि हमारा ये संबंधी है, हमारा ये फलाना है, तो उनके लिए ही हम करते हैं। वैसे हम जितना जितना हो सके अनलिमिटेड अवेयरनेस, मतलब हम सोचे कि हमारा वाइब्रेशन सभी के लिए ही पॉजिटिव ही हो, तो चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हमारा वाइब्रेशन नेचुरली ही पॉजिटिव सबके लिए निकलेंगे। और अगर कोई खास ऐसी सिचुएशन में है और उनके लिए खास हमको जैसे एक्स्ट्रा लाइट देनी है, तो उनके लिए हम उसका इमेज हमारे सामने ला करके परमात्मा की याद में रहेंगे, तो हम उनको वो वाइब्रेशंस दे सकेंगे उसके बारे में सोच करके। लेकिन उसके बारे में सोचकर उसको एक साइड में रखकर, नहीं तो क्या होता है हमारा अटैचमेंट भी जैसे बढ़ता जाता है। अटैचमेंट से हम कुछ भी करेंगे तो उसमें उस व्यक्ति को इतना फायदा नहीं हो सकेगा। तो अपने बच्चों के लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस देना ये सोच रहे हो, ये तो अच्छी बात है सुनंदा बहन, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही क्यों, हम सबके लिए ऐसे करें तो हमारा नेचुरल स्वभाव ऐसा हो जाएगा, तो जो भी हमारे सामने आएंगे उन्हों को भी वो वाइब्रेशंस मिलते रहेंगे। सो हमारा तो मानना यही है कि हमारा हर एक के लिए ऐसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहे, नॉट जस्ट एक दो के लिए, उसमें हम लिमिटेड कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। और पेरेंट के हिसाब से हमें नेचुरली सबके लिए एक समान सोचना चाहिए, तो इसलिए ये ना सोचे कि अपने बच्चों के लिए ही, लेकिन हमारा नेचुरल नेचर ऐसा बन जाए तो जो भी सामने आएंगे उनको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन ही मिलता जाएगा।
जी, तो बहुत ही एक अनलिमिटेड एस्पेक्ट आपने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ किसी एक के लिए नहीं करें, जो हम सभी के लिए करते हैं तो फिर तो नेचुरली सभी को बेनिफिट मिलता है। तो उस अनलिमिटेड वे से सोचना भी जरूरी है, और नेचुरली हम अपने घर वालों के लिए सोचते हैं बट सभी के लिए जब करते हैं तो उसको उनका हिस्सा भी उसमें मिलता है,
उसमें सभी को फायदा हो जाता है।
जी, कुमार विश्वजीत हैं, ये YouTube से हमारे साथ प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि मैं 16 वर्ष का हूँ और मैंने 7 डेज का कोर्स भी सुनना शुरू किया है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में नए हैं। तो अब ये पूछते हैं कि क्या मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए या स्पिरिचुअलिटी परस्यू करना चाहिए, ऐसा ये पूछते हैं कुमार विश्वजीत। और साथ में एक और प्रश्न है लीजा सचदेव, मिलता जुलता सवाल पूछती हैं। वो पूछते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए कैसे एनकरेज करें। एक तो ये 16 इयर्स ओल्ड के हैं कुमार विश्वजीत, और वो चाहते हैं कि क्या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ऐसा है कि हम पढ़ाई नहीं करें या क्या करना चाहिए, ऐसा वो पूछते हैं। और लीजा जी बच्चों को कैसे पढ़ाई के लिए एनकरेज करें पूछती हैं।
अच्छे प्रश्न है, और समझते हैं कि पढ़ाई करना माना स्पिरिचुअलिटी में ज्वाइन करना माना पढ़ाई छोड़ देना, लेकिन दोनों ही साथ साथ भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ देवे और स्पिरिचुअलिटी में लग जाए। एक जमाना था जबकि कहते थे अभी तो ये दुनिया पता नहीं कब कितनी चलेंगी, तो पढ़ाई छोड़ दो और इसमें ही लग जाओ, लेकिन उसके बाद तो कितने सारे साल बीत गए और अभी भी वही के वही है। तो इसलिए ऐसे नहीं है कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी है, पढ़ाई भी करते रहे, साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का भी ये पाथ है उस पर भी चलते रहे। तो जितना जितना यहाँ स्पिरिचुअलिटी में सीखते हैं वो आपको पढ़ाई में भी मदद करता है, पढ़ाई करते रहे साथ साथ ये स्पिरिचुअल पाथ भी फॉलो करते रहे, तो यहाँ पर भी बहुत सारी बातें आप सीखेंगे जो आपको अपनी पढ़ाई में भी मदद कर सकेंगे। स्पिरिचुअलिटी में हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं, उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, उसमें हमारा माइंड कंट्रोल बढ़ जाता है। जितना जितना ये हमारा बढ़ता जाता है तो फिर हम स्टडीज जो करते हैं वो हम सहज ही कर पाते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि हम पढ़ाई को छोड़ देवे जस्ट बिकॉज हमें स्पिरिचुअल पाथ ज्वाइन करना है. बिकॉज स्पिरिचुअल पाथ इज अ वे ऑफ लाइफ एंड स्टडी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ. तो जितना जितना हम पढ़ाई करते जाएंगे साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करते जाएंगे, दोनों का एक दो में जैसे हेल्प होती रहेंगी. स्पिरिचुअलिटी विल हेल्प मी इन माई स्टडीज, माई स्टडी विल हेल्प मी टू प्रोग्रेस फर्दर इन स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो. एंड सो टू बी एबल टू डू बोथ एट द सेम टाइम. कहीं ने पढ़ाई छोड़ दी थी उन समय, फिर सोचा कि अभी तो पता नहीं what's going to happen. And then they regret they didn't study more. Study करते रहे और साथ साथ spirituality भी करते रहे, then you'll benefit in both ways.
जी, ममता जी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं और ममता का प्रश्न है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नहीं, क्यों ऐसा हो गया है मेरे साथ, क्या करूं नॉर्मल होने के लिए और हैप्पी होने के लिए, ऐसा ममता जी पूछती हैं. मैं समझता हूं सिर्फ ममता जी ही नहीं, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ऐसा कभी कभार महसूस करते हैं, स्पेशली इन 3-4 महीनों में ऐसा महसूस करने लगे हैं कि अचानक एक डिस्कम्फर्ट सा महसूस करते हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, वेलबींग महसूस नहीं होता, नॉर्मल होना चाहते हैं, वापस हम खुश होना चाहते हैं, बट क्या किया जाए उस चीज के लिए ये समझ में नहीं आ रहा है. ममता जी
आपने जो प्रश्न पूछा है, आप भाई ने भी बताया, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कुछ अच्छा नहीं लगता है. अच्छा क्यों नहीं लगता है, अगर हम इसके सोच में भी चले जाए तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे क्यों अच्छा नहीं लगता है. लेकिन अच्छा नहीं लगता है और ये अच्छा लगता है, हम क्या करें जो हमें अच्छा लगता है. कुछ नहीं करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ करने बैठ जाओ. मेरा तो मानना यही है कि हम प्रैक्टिकल में जो कुछ भी करते हैं तो उसमें न खुद हमें खुशी मिलती है, लेकिन जिसके साथ करते हैं उनों के साथ भी फिर मिलकर के करते हैं तो खुशी होती है. जी, हमने देखा है कि जितना भी हो सके आप अकेले कुछ करने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे और आपका संकल्प चलेगा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ. लेकिन आप दो तीन का साथ लेकर के मिलकर के कुछ करने लग जाओ, अब देखेंगे वातावरण ऐसे खुशी का बन जाएगा जो ऑटोमेटिकली फिर और भी व्यक्ति वहां पर खींच कर आएंगे. जैसे हम समझते हैं आप जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ डांसिंग, थोड़ा सा डांसिंग शुरू कर दो, उसमें 2-3 जने करने लगेंगे, फिर 2-3 जने देखेंगे वो भी आकर के ज्वाइन करने लग जाएंगे. सो जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ एक्टिविटी, अ लिटिल बिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा करने लग जाओ, जस्ट टू गेट योर माइंड सेट आउट ऑफ दिस थिंकिंग दैट मुझे ये अच्छा नहीं लगता है. ऐसे सोचते रहेंगे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो ऐसे बैठे रहेंगे, संकल्प ऐसे व्यर्थ चलते रहेंगे. लेकिन आप कुछ करने लग जाओ और आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में कितने अट्रैक्ट होकर के आपके पास आ जाते हैं. आप ऐसे ही सोच में बैठे रहेंगे तो आपके साथ ऐसे ही लोग आएंगे जो जिनको ऐसा ही सोच चलता है, तो जैसे उसका ही जैसे ग्रुप बढ़ता जाएगा और पीपल हु कांट डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स. और अगर आप कुछ करने लग जाएंगे तो वो ग्रुप भी बढ़ता जाएगा वे पीपल आर एक्चुअली डूइंग समथिंग एंड एंजॉइंग देमसेल्व्स. सो मुझे निमित्त बनना है किसके लिए, टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग और टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली एंजॉइंग देमसेल्व्स एंड हैविंग दैट फीलिंग ऑफ एंथुजियाज्म इन एवरीथिंग. तो जितना जितना हम करते जाएंगे नेचुरली वो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारा एक्टिविटी है, उनसे दूसरे भी अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, उसमें मिलकर के शामिल हो जाएंगे, तो वातावरण ही ऐसे खुशी का बन जाता है, सभी को लगता है मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं. देन एवरीवन वांट्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट. सो लेट मी बिकम एन इंस्ट्रूमेंट जो ऐसा वातावरण बनाते हैं, ऐसा वातावरण बना के रखते हैं जो न सिर्फ मुझे फायदा होता है लेकिन दूसरों को भी उसमें फायदा हो जाता है. तो अगर हम ऐसे
जो बात आप कह रहे थे प्लीज कंटिन्यू करें.
हाँ, अगर हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा. लेकिन कई बार हमने देखा है यहाँ पर हम एक दो ही कुछ शुरू करते हैं और फिर उसमें 2-3 आकर के ऐड हो जाते हैं, थोड़े ही समय में इट बिकम्स अ ग्रुप ऑफ 15-20 पीपल हु आर एक्चुअली डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव जिसमें सभी को बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है. और जितना जितना हम ऐसे ग्रुप एक्टिविटी करते जाते हैं तो हम खुद तो खुश होते हैं लेकिन दूसरों भी उसमें खुशी महसूस करते हैं. सो देन इट बिकम्स रियली समथिंग दैट अपलिफ्ट्स एवरीवन एंड क्रिएट्स अ वेरी पावरफुल एटमॉस्फेयर.
जी, बहुत ही अच्छी बात आप कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि करने की आवश्यकता है, कि हमें लगता है कि कोई और करे या फिर कोई कुछ ऐसा हो जाए सिचुएशन जिससे मैं खुश हूं या सिचुएशन मेरे लिए बदले, बट हम भी कुछ कर सकते हैं कलेक्टिवली, क्रिएटिवली हमें कुछ करना, कुछ अच्छी चीजें करने के बारे में अगर हम सोचें तो फिर हम वातावरण को बदल सकते हैं। और कभी कभार हम ज्यादा वही चीजें सोचते सोचते उस वातावरण को भी ऐसे बना देते हैं, तो उसे भी चेंज करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न इससे ही मिलता जुलता है, रवि गोयन का हमारे साथ जुड़े हैं। रवि हमारे साथ नेपाल से जुड़े हैं और वो कहते हैं, बाय थिंकिंग दैट आई एम राइट कैन आई बी राइट, ऐसा ही पूछते हैं। उनका प्रश्न है कि अगर मैं सिर्फ ये सोचने लगूं कि मैं सही हूं और मैं सही कर रहा हूं, तो क्या सही सोचने से क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा पूछते हैं।
हम सोचते हैं हम सही है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट के आधार पर ही होता है। जरूरी नहीं है कि हम हर बात में सही है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन बन गया है और उसमें हम राइट है और राइट सोच करके हम करते हैं तो दैट इज फाइन, लेकिन अगर हम गलत है और फिर भी हम कहे कि आई एम राइट, तो वो तो सिचुएशन को और ही बिगाड़ देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो वो सिचुएशन देखना है और उस सिचुएशन में समझना है कि राइट बात क्या है। इफ आई एम राइट एंड आई एक्सेप्ट दैट आई एम राइट, दैट्स फाइन, बट इफ आई एम रॉन्ग एंड स्टिल आई से दैट आई एम राइट, तो वो तो अच्छी बात नहीं है। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई एम थिंकिंग, वॉट इज माई थिंकिंग। सो ऑल्सो नेसेसरी कि हम दूसरों का भी विचार देखें कि उसका भी, बिकॉज इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ जस्ट राइट थिंकिंग, इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ परस्पेक्टिव। जैसे एक ही बॉल है, एक साइड ब्लैक है एक साइड व्हाइट है, एक जन कहता है ये ब्लैक है, दूसरा कहता है ये व्हाइट है, तो देखा जाए तो दोनों ही राइट है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि नहीं ये ब्लैक ही है बिकॉज आई एम ओनली सीइंग वन साइड ऑफ इट। तो अगर हम पर्सपेक्टिव को देखते हैं, इफ यू लुक एट द फुल पिक्चर, तो आपको मालूम पड़ता है कि आप राइट है या नहीं है। उसके आधार से आप कह सकते हो कि यस आई एम राइट और नो आई एम नॉट राइट। बट टू बी एबल टू एक्सेप्ट ऑल्सो दैट वेदर आई एम राइट और नॉट, कई बार हम सोचते रहते हैं कि दैट आई एम राइट एंड दैट इज इट, यू नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट एनीथिंग, देयर इज नो फ्लेक्सीबिलिटी, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमारे थॉट्स में फ्लेक्सिबल रहना भी बहुत जरूरी है। आई होप आपको ये थोड़ा प्रश्न, कई बार इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट आई एम रॉन्ग, बट जब भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो मालूम पड़ता है दैट इट्स पॉसिबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम द अदर पर्सन ऑल्सो।
जी, एक और ऐसा ही मिलता जुलता सवाल है कि अनफ्रेंड है, जसपाल नाम है इनका, और जसपाल फेसबुक से हमारे साथ लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और वो प्रश्न पूछते हैं, क्या ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, ये प्रश्न है इनका।
बहुत करके हम अपने सामने सिचुएशंस को इन्वोक करते हैं, जैसा सोचते हैं वैसे कहते हैं, जैसा सोचेगा वैसा पाएगा, जो से करेंगे वैसा पाएगा। तो हम कई बार पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं, हम सोचते हैं ऐसा न हो जाए ऐसा न हो जाए, बिकॉज हम ऐसे थॉट करते हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही हो जाता है। हम सोचते हैं हम एक ग्लास पानी का लेकर के जा रहे हैं, साथ में और भी चीजें हैं, और सोचते हैं एक ग्लास गिर न जाए, तो हमने ये जो संकल्प ही किया ना, तो उसी समय वो ग्लास गिर जाएगा। सो जितना जितना हम रियलाइज करें कि हमारे पास वो थॉट पावर है, वो इतना पावरफुल है, तो जितना हम उस पे ऊपर अटेंशन रखेंगे उसी अनुसार सोचेंगे तो ऐसे ही होगा। आई डेफिनेटली बिलीव जो सोचेगा ऐसे होगा। तो हमें अच्छी बात हमें एक्सपीरियंस करनी है तो हम अच्छा ही सोचते रहे, नहीं तो इट्स एक्चुअली जो भी आप सोचेंगे आपके सामने आएगा, फिर कहेंगे देखो मैंने सोचा था ऐसे होगा इसलिए ये हुआ, तो ये तो आपने पहले से ही सोच लिया इसलिए हुआ, देन यू कांट ब्लेम एनीथिंग एल्स, यू एक्चुअली इनवोक्ड इट योरसेल्फ। तो इसलिए जितना हो सके ये अटेंशन रखे, कंट्रोल रखे कि हम कैसे थॉट्स करते हैं। आज ही हमने मुरली में पढ़ा था, एक एक संकल्प सारे विश्व के लिए आप कैसा क्रिएट करते हो। सर उसी समय मेरा संकल्प चला कि हम सारे दिन में कितने संकल्प ऐसे चला लेते हैं, समझते नहीं है कि ये एक एक संकल्प हमारा फॉर द वर्ल्ड बेनिफिट है। तो अगर हमारा संकल्प इतना पावरफुल है, शक्तिशाली है, देन इज गोइंग टू हेल्प द वर्ल्ड। बट इफ हमारा संकल्प नेगेटिव है, व्यर्थ है, देन आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द वर्ल्ड। सो डेफिनेटली हम ही एक्चुअली एंटिसिपेट करके इन्वोक करते सिचुएशंस को हमारे सामने लाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि हम पॉजिटिव सिचुएशंस को इन्वोक करें तो हमारे सामने पॉजिटिव बातें होती रहें।
जसपाल, मैं समझता हूँ आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दीदी ने दिया कि बहुत बार हम सोचते सोचते पानी का ग्लास गिराते हैं कहीं गिर न जाए, तो नेचुरली ऐसा होता है। तो इसके लिए पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना हम पॉजिटिवली सोचते हैं तो पॉजिटिव थॉट्स का भी इफेक्ट हमारे ऊपर होता है। तो इसलिए जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते भी हैं, तो इसलिए अच्छा सोचना इम्पोर्टेंट है। हमारे एक और फ्रेंड है विजेता, विजेता त्यागी, और विजेता हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं। और विजेता जी प्रश्न पूछती हैं, हाउ टू ट्रस्ट पीपल एंड स्टॉप ओवरथिंकिंग, कैसे हम लोगों पे विश्वास करें और ओवरथिंकिंग को कैसे स्टॉप करें, पूछते हैं विजेता।
विजेता, हमारे सामने भी एक बार ऐसी सिचुएशन आई थी, हमको किसी ने लेट डाउन कर लिया था, हम उसके ऊपर ट्रस्ट तो रखा था कि ये हमारे लिए ये कुछ करेंगे, ये हमारे ऑफिस में मददगार है, उनके ऊपर कुछ जिम्मेवारी दी है, लेकिन फिर दे लेट यू डाउन, सो देन यू फील हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है। लेकिन हम ये सोचे कि अगर हम किसी को ट्रस्ट नहीं करते हैं तो फिर हमारा ही कितना नुकसान हो जाता है। ऐसे नहीं है कि हम उसने एक बारी हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम उसके ऊपर से वो ट्रस्ट करना ही छोड़ दे रहे। अगर हम सही में देखा जाए तो ऐसे तो कितनी सारी बातें हमने भी ऐसे नहीं की होंगी, लेकिन भगवान ने भी हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है। तो इस ख्याल से हम देखें कि ट्रस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। अगर हम एक बार ही उसको ट्रस्ट न करके छोड़ देते हैं तो हमारा भी नुकसान होता है, उस सामने वाले व्यक्ति का भी नुकसान होता है। इसलिए जितना हो सके हम ट्रस्ट रख करके ही चलते चले। हम भी यहाँ पर इतनी सारी बहनें रहती हैं, हमें भी जैसे दारी जानकी यहाँ पर थी हमारे साथ, उन्होंने भी हम पर बहुत सारा ट्रस्ट रखा, तभी हम सब आगे बढ़ सके हैं। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो वो जैसे करने की उम्मीद भी नहीं रखेंगे, वो फिर आगे बढ़ नहीं सकेगा। लेकिन दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए भी विजेता, अगर आप उसका ट्रस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि वो भी आपको कोई ना कोई बात में, कोई ना कोई सिचुएशन में जरूर मददगार बन सकते हैं। आप ट्रस्ट ही छोड़ देंगे तो उनसे नजदीक पना भी नहीं हो सकेगा, आप उनके साथ संबंध भी नहीं रह सकेंगे। उसके बारे में सोचेंगे तो लगेगा जैसे बहुत ही नेगेटिव संकल्प चलते हैं, हमेशा वो याद आएगा, उसने तो मेरा ट्रस्ट ब्रेक किया है, दे ब्रोकन माई ट्रस्ट। इसलिए ऐसे न सोच करके हमेशा ट्रस्ट करते रहना, नेसेसरी टू हैव वो फीलिंग कि हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। विश्वास नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नेगेटिव संकल्प चलते रहेंगे, हम सिचुएशन में मदद नहीं ले सकेंगे। लेकिन इसमें हमारा सोच उस तरह का ना चले कि इसने हमारा विश्वास तोड़ दिया, लेकिन उसको हम सेकंड चांस दे, हमको भी सेकंड चांस मिला है ना, ऐसे नहीं है कि हमने कुछ गलत किया किसी ने फिर छोड़ दिया। लेकिन हर एक को सेकंड चांस देने बहुत जरूरी है। सेकंड चांस देंगे तो फिर हमारा संकल्प भी उसके प्रति नहीं चलेगा। हमारा संकल्प तब चलता रहता है जब हम सोचते रहते हैं और देव रियली लेट मी डाउन, देव डन सो मच रॉन्ग फॉर मी। लेकिन हम वो न सोचे और सोचे कि कितना अच्छा किया है, कर सकते हैं, और जैसे हम करते हैं वैसे वो भी कर सकते हैं। इस ऐसे ख्याल करेंगे तो फिर आपका जो ओवरथिंकिंग है वो नेचुरली स्टॉप हो जाएगा। आप नेगेटिव देखते हो तो ओवरथिंकिंग हो जाते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव देखेंगे तो आपका संकल्प उसके प्रति भी थोड़ा कम चलेगा। देन यू विल फाइंड दैट योर माइंड इज एक्चुअली स्लोइंग डाउन।
थैंक यू दीदी, मैं समझता हूँ ये इनको हेल्प करेगा। अगला प्रश्न थोड़ा संजीदा है। मोनिका जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोनिका फेसबुक से लाइव देख रहे हैं। इफ आर लव्ड वन पासेस अवे, हाउ शुड वी फील, व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ। मैं समझता हूँ ये बहुत सारे लोग इस चीज को फेस कर रहे हैं, बिकॉज जैसे पैंडेमिक है, ऐसे टाइम पर भी अगर हमारे कोई नियर एंड डियर वंस की डेथ हो जाती है तो लोग अचानक इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हाउ शुड वी एक्चुअली फील अबाउट इट। तो और ये भी प्रश्न पूछती हैं कि डेथ के बाद क्या होता है। मोनिका,
नेचुरली जब हमारा कोई प्यारा व्यक्ति पास हो जाता है तो हमें अंदर से शॉक तो लगता है, अंदर से थोड़ा गम भी होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं पार्ट ऑफ लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ लाइफ, हर एक को जाना तो है ही, लेकिन कई ऐसे लगता है कि जैसे कोई जल्दी चले गए तो इसलिए हमें दुख बहुत महसूस होता है। कोई चले जाते हैं तो नेचुरली उसके मिसिंग फीलिंग होती है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि उस आत्मा का, उस व्यक्ति का यहाँ पर इतना ही जैसे रोल था। आप ड्रामा भी देखते हो, ड्रामा देखते हैं तो उसमें आप देखते हो कईयों का छोटा रोल होता है, कईयों का लंबा रोल होता है। तो अगर आप इस ख्याल से भी देखें कि इसका इतना ही रोल था, अभी इसको कहीं और जाना है अपना दूसरा पार्ट बजाने के लिए। आपने पूछा मोनिका जी, आपने पूछा कि मरने के बाद क्या होता है। एक्चुअली मरना इज जस्ट अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में हम जाते हैं, तो ऐसे नहीं है कि हम मर जाते हैं। एक्चुअली आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है। मरता क्या है, ये शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ है वो मरता है। आत्मा अविनाशी है, वो सिर्फ अपना जगह बदलती है, अपना कॉस्ट्यूम बदलता है। तो आज हम एक रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे ये फलाना कॉस्ट्यूम चाहिए। जैसे हम कोई पार्ट में प्ले, कोई ड्रामा में पार्ट प्ले कर रहे हैं, अगर हम राजा का रोल प्ले कर रहे हैं तो मुझे राजा का कॉस्ट्यूम चाहिए। और दूसरा पार्ट हम प्ले कर रहे हैं, कोई स्ट्रीट वाला ही है, कोई पुअर पर्सन है, तो उसका कॉस्ट्यूम भी ऐसा ही है। तो जैसा पार्ट हम बजाते हैं उसी अनुसार हमको कॉस्ट्यूम मिलता है। तो ये कॉस्ट्यूम हम चेंज करते हैं, उसको ही हम मरना कहते हैं। तो मरने के बाद क्या होता है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेती है और जाती है। तुरंत ही तो जन्म नहीं लेती है, कुछ महीनों के बाद जन्म लेती है, लेकिन फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करके दूसरा जन्म लेती है, नए सर फिर दूसरी जीवन शुरू करती है। हमारा प्यारा कोई चला जाता है और ऐसे नहीं है कि उसके साथ हमारा सदैव के लिए संबंध खलास हो गया, क्योंकि हमारा आत्मिक नाते से अविनाशी संबंध होने के कारण जो भी चला जाता है उनके साथ भी संबंध तो बना रहता है। तो हम उसके लिए भी, हमारा जो थॉट्स है, हमारा जो विचार है, उनके लिए भी इतना प्यार भरा रखे, उतना शांतिपूर्वक रखे, तो उनको भी जहां भी जाते हैं वहां पर उनको कोई भी दुख दर्द न हो। जितना जितना हम उसको दुख से याद करेंगे तो उस आत्मा को भी दुख की फीलिंग आएंगी, जैसे उसको हम खींच रहे हैं, उनको रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन जितना ही हम उनको प्यार से जैसे विदाई दे करके आगे जाने के लिए वो परमिशन देते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। तो मोनिका जी, आपका प्यारा कोई भी चला जाता है, ऐसे लगता है वो ऐसा सिचुएशन हुआ है, कोई चला गया है, तो आप उसको दुख से याद न करें, लेकिन जितना जितना प्यार से याद करेंगे, जितना जितना सुख से याद करेंगे, तो ये वाइब्रेशंस उस आत्मा को पहुंचेंगे। भले वो इस शरीर में नहीं है, लेकिन दूसरे शरीर में भी वो वाइब्रेशंस वो कैच करेंगे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, बहुत ही सुंदर गाइडेंस आपने दिया। स्पिरिचुअलिटी में ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि सोल इटर्नल है, आत्मा इटर्नल है और हम मरते नहीं है, ये शरीर ही मरता है और ये ट्रांजिशन है, इसकी तरह से जब हम देखते हैं तो ये चीज समझना आसान होता है। और हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे फील करना है, उसके लिए भी आपने बताया कि हम उनके लिए गुरु विशेष रखें, भले वो इतने समय हमारे साथ रहे, उनके आगे की जर्नी के लिए हम उनके बारे में अच्छा फीलिंग्स दें, उनको ग्रेटिट्यूड दें, तो बहुत ही अच्छी चीज है। हमारे पास समय की कमी है दोस्तों, तो मैं सारी चीजें, सारी प्रश्न नहीं ले पाऊंगा। एक आखिरी प्रश्न मैं लेना चाहता हूं। जरीन फारूकी हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हैं और जरीन पूछती हैं, हेलो, माय हस्बैंड डज नॉट लव मी, अ मैरिज ऑफ 21 ईयर्स old, my heart is very broken, ऐसा जरीन पूछती हैं कि उनकी शादी को 21 साल हो गए हैं, बट वो महसूस करती हैं कि उनके पति उनसे प्यार नहीं करते और अपने दिल को टूटा हुआ महसूस करती हैं। जरीन को एडवाइस करें।
जरीन, congratulations for having 21 years of happy married life. अभी जो भी होता है हम आप कहेंगे कि ड्रामा ही है, इतना समय आप प्यार से अपने हस्बैंड के साथ रहे ये तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल की दुनिया में हम ये भी देखते हैं कि जो पहले जमाने में होता था, जो इतना फेथफुल रहना होता था, इतना रिलेशनशिप को बांध करके रखना होता था, वो आजकल कम देखने में आता है। तो अगर थोड़ा सा भी उसकी तरफ से ऐसे लगता है कि ही इज बिकमिंग डिस्टेंस फ्रॉम यू, then the best thing for you to do is भगवान का साथ लेकर, भगवान का सहारा लेकर के to actually empower yourself with God's love. हमने देखा है आजकल फिजिकल लव फ्रॉम रिलेशन फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स उतना उससे हमको इतना फायदा नहीं होता है, लेकिन भगवान के प्यार से हम अपने को भरपूर कर देवे तो फिर हस्बैंड के लव की कमी भी महसूस नहीं होंगी। और जो भी कारण है जिसके साथ मैरिज में कुछ लगता है कि दे पार्टिंग वेज और वट एवर, द मेन थिंग इज टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, चाहे साथ में रहो चाहे अकेले रहो, बट टू कीप योर सेल्फ हैप्पी सो दैट यू आर एबल टू देन कंटिन्यू विद लाइफ। ऐसे नहीं है कि उसने हमको छोड़ दिया तो अभी हम क्या करें, हम सिर्फ भगवान का साथ लेकर के हम अपने को आगे बढ़ाए, अपने अंदर शक्ति महसूस करते रहे। अगर हम अकेले होकर के फिर भगवान से भी कुछ न लेकर के अपने को कमजोर कर देंगे तो हम किसी को भी मदद नहीं कर सकेंगे। नॉट आई वॉन्ट बी एनी गुड फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट बी एनी गुड फॉर एनी वन एल्स। एंड सो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन इज दैट हैज ब्रॉट यू टू दिस पॉइंट ऑफ सेपरेशन, टू कीप योर सेल्फ हैप्पी and to keep that connection with God so that you feel that power from Him, that you're not alone. जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ इसी व्यक्ति का साथ चाहिए, परमात्मा का साथ ही हमारे लिए बहुत है जो हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। So I'm sorry that you've come to that situation, but not to feel alone in that, because God is there with you at every step, and so to take support from God. I hope you're able to take some benefit from this, because we each one's drama changes and we don't know what happens at any moment. So to accept the part of the drama and to move along with that feeling of happiness.
मैं समझता हूँ ज़रीन, आपको इससे थोड़ी बहुत तो राहत महसूस हुई होगी। ये ऐसी सिचुएशंस बहुतों के लाइफ में होते हैं जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, बट जैसे दीदी ने कहा कि हमें गॉड को अपना कंपेनियन बनाना है, उनसे हम हेल्प ले सकते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, सपोर्ट रखे, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए हम अपने आप से प्यार करें, ईश्वर से प्यार लें और दूसरों को प्यार बांटें, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम खुश रहें हर सिचुएशन में, इसकी कोशिश करनी है। बहुत सिचुएशन जब हमारे कंट्रोल में नहीं है तो उस समय पर ही हमारे सही टेस्टिंग होती है कि हम अंदर से कितने मजबूत हैं, और इस गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत सारे और दोस्तों के प्रश्न हैं जो मैं नहीं ले पाऊंगा, ललित जी ने प्रश्न पूछा है, नागश्री ने प्रश्न पूछा है, आप दोनों के प्रश्न को मैं कल के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगा, और जिन दोस्तों के सवाल मैं आज नहीं इंक्लूड कर पाया, जिनको नहीं ले पाया, उसके लिए मैं अपोलोजाइज करता हूँ। फ्रेंड्स, एक ही घंटे का समय होता है और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न आप पूछते हैं, सारे प्रश्नों को जज करना और मेजर करके सारे सवाल ले पाना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोगों ने बहुत सारे फीडबैक्स भी लिखे, वो सब कुछ हम पढ़ के नहीं सुना पाते हैं और वो स्क्रीन पे समय समय पर आप देख पाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का सवाल पूछने के लिए, और आप सभी की तरफ से मैं जसु दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ जो खास आज लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़े प्रोग्राम के लिए, और हमारे सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल विजडम रहे और हमें गाइडेंस ऑफर किया है आज। Thank you so much, Josephine, for joining us.
Thank you also. It's been my pleasure to be with all of you also. It's been very interesting questions too. So really great fortune for me too. Thank you. उम्मीद है कि सब जो भी ऑडियंस में जिन्होंने भी प्रश्न पूछे थे आपको भी सही जवाब मिले होंगे, और कुछ न कुछ प्रैक्टिस करने के लिए भी that will help to empower yourselves.
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका। इससे पहले कि मैं आपको मेडिटेशन के लिए इनवाइट करूं, मैं एक दो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स अपने फ्रेंड्स के लिए करना चाहता हूं। दोस्तों, पिछले लगभग 3 महीने से 99 एपिसोड्स, कल हम 100 एपिसोड करने वाले हैं, तो हमने सोचा यही था कि ये छोटी सी यात्रा हमने शुरू करनी थी, पर आप सभी के साथ की वजह से हम इतने सारे दिनों से आपके साथ जुड़ पाए और लाइव ब्रह्मा कुमारी इसके देश विदेश के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों से मुलाकात करवा पाए। आपसे सिर्फ एक फीडबैक चाहते हैं, आप ये फीडबैक हमें ईमेल पे दे सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि क्या ये जो टाइमिंग हम रख रहे हैं शाम को 6 से 7, ये टाइम सूट करता है, या फिर आप कोई और टाइम हमें सजेस्ट करना चाहते हैं जिस टाइम पे हम लाइव जा सकें और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका बेनिफिट्स ले सकें, क्योंकि वर्किंग डेज पे 6 to 7 आप लोगों के लिए थोड़ा बिजी हो सकता है। तो अगर आपको कोई दूसरा टाइम चाहिए हो तो आप प्लीज कमेंट करें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं सोशल मीडिया एट द रेट brahmakumaris.com पर आपके फीडबैक्स के साथ। बट ये कमेंट अगर आप करेंगे कि आपको कौन से टाइम पे प्रोग्राम बहुत अच्छा सूट कर सकता है या प्रोग्राम के टाइमिंग्स में कोई परिवर्तन चाहिए तो प्लीज सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में यूट्यूब और फेसबुक जहां पर भी आप देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं अभी रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर जसू से कि अगले 3-4 मिनट के लिए हम सबको मेडिटेशन का एक्सपीरियंस कराएं। आप खुद एक अकम्पलिश योगी हैं, ओवर सेवरल डेकेड्स आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया है, सो इट इज अ फॉर्च्यून कि हम आपके साथ मेडिटेट कर सकें। तो हमारे सभी फ्रेंड्स के लिए फॉर द नेक्स्ट 4-5 मिनट्स इन द मेडिटेशन प्लीज। जसू बहन,
थैंक यू। ओम शांति। पहले तो रिलैक्स होकर के बैठे, अपने मन को शांत कर देवे। फोकस ऑन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। इमेजिन द सोल, a point of light in the center of the forehead. I, the soul, am a being of peace. Mishant Swarupatma, Prem Swarupatma, Satchitanand Swarupa. जैसे ही मैं अपने को शांत स्वरूप देखती हूं, शांति भी महसूस करूं। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, परम पिता परमात्मा जो प्यार का सागर है, उनकी संतान, उनसे प्यार की शक्ति लेकर के अपने अंदर वो प्यार महसूस करती हूं। जैसे जैसे मैं उसके बारे में सोचती, ऐसे उनकी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करती, मुझ आत्मा को और ही शक्तिशाली बनाती। आत्मा सत है, चैतन्य है, शांत स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जितना जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बैठते हैं, अपने ही गुण उतने ही शक्तिशाली महसूस करते हैं। I, the soul, a living being, I'm connected to God, connected to nature. I take from God, I take from nature. So now, let me give to nature. Nature has been very helpful, very benevolent to me. So now let me serve nature. Keeping myself in that state of peace and bliss, I let these vibrations emerge from myself, spreading out into the world. The world at the moment needs my vibrations of peace and stability, of love. So let me just concentrate on spreading vibrations of love, peace, and harmony into the world. As I think, so I will create. Whatever are my thoughts, such are the vibrations emerging from that, spreading into the world. So let me just have peaceful thoughts, pure thoughts, thoughts of stability and power to empower the world. The world in turmoil doesn't need any more weak thoughts. So let me stop having weak thoughts and instead just have pure, powerful thoughts. In this way, I help myself, I help everyone around me, empowering myself and empowering the world. The only thing that can bring change in myself and in the world are my thoughts. So let me contribute by having pure, powerful thoughts. Let me recognize myself as this powerful being. I am a being of peace, bringing about peace in the world. I am a being of love, sharing my love with the rest of the world. I am a being of joy, sharing that happiness and joy with all my family, the rest of the world. So concentrating in just these positive qualities, let me continue with whatever I do, just letting these vibrations of love and happiness spread into everything. Let each one experience the joy of life, being at peace with the self, being at peace with others. My one and only true eternal connection is with the Supreme, the one who never lets me down, the one who is always there at my side. All I have to do is stay with him. Let me keep myself connected with him, take from him, and give to others. Let me not depend on any human being, but just this soul connection, the spiritual connection with the one and only, the Supreme. Let me keep myself under his canopy of protection, being protected by his light and might. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.